कारण
महात्मा बलि
महाराज अपने आप को
परम संतुष्ट समझते हुए
परम ऐश्वर्यवान
तथा
संपन्न बन
गए
और राज्य का भोग करने लगे।
इसका तात्पर्य बढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए।
ब्राह्मण ऋच देव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यता है नर देव। वास्तव में देव शब्द भगवान का द्योतक है। भगवान विष्णु को संतुष्ट करके ब्राह्मण प्रसन्न होने के कारण मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं और उनकी सलाह से नरदेव कहलाने वाले क्षत्रिय शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग यथा वैश्य तथा शूद्र विधि विधानों का ढंग से पालन कर सकें। इस प्रकार लोग क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयंरूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपरिगमनं श्रीगुरु न वैष्णवाश्च श्रीरूपं सारजातं सहैरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहैरं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत नमस्ते तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवाराय कृष्ण भेषाय भूतले शिवते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 35। जमाली महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह है आकाश में चमकीला चांद। तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में, तो तीन लोक को कैसे डिफाइन करते हैं? तीन लोक कौन कौन से हैं पता है? एनीवन? भूर भव स्वाहा। तो भूर तो हो गया मिडिल, मिडिल हो गया कि नहीं? बलि महाराज का राज्य कहाँ था? स्वतर्लोक। तो स्वतर्लोक नीचे है कि ऊपर है? तो एक नीचे का लोक, मतलब तीनों लोक का मतलब है सबसे नीचे है पाताल लोक। पाताल लोक एक काउंट होता है, मिडल लोक पृथ्वी भू और ऊपर के लोकों में काउंट होता है स्वर्ग लोक। तो तीनों लोक में जब आते हैं, कुछ लोग भू वो स्वर्ग को तीन लोक मानते हैं, परंतु वो तीन लोगों की परिभाषा आती है जब प्रलय होता है। तो परंतु यहां जो है तीन लोग की जो बात आ रही है वो है पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्ग लोक पे विजय प्राप्त कर ली है, उसका क्या एविडेंस है, उसका प्रूफ है कोई, सबूत होना चाहिए ना कि यस स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त हो गई। इंद्र जो स्वर्ग लोक का राजा है और देवता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं उसको डिथ्रोन कर दिया गया। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा है, लीजिएगा, ये है श्लोक संख्या 28। तीन चार श्लोक है, इनका सिर्फ अनुवाद करता हूं। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूं जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तो शक्ति कहां से आई? नोट करने वाली पॉइंट है कि राजा को शक्ति प्राप्त हो गई। राजा को शक्ति मिल रही है ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों की क्वालिटी क्या है? कि ब्राह्मण जो है अपने आप में परफेक्ट ब्राह्मण है, परफेक्ट परफेक्शन में, नाम के नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण की क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? द्विज देव शब्द इस्तेमाल हुआ ना, तो द्विज क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, वैष्णव क्या होता है, विप्र क्या होता है, इस संदर्भ में चार शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट। जब किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हुए बालक का उपनयन संस्कार होता है, उपनयन किसे कहते हैं? जनेऊ। तब उसको जो है द्विज कहा जाता है। द्विज, द्विज का मतलब है दूसरा जन्म, इट इज नाउ सेकेंड बर्थ। उसको हम आज की तारीख में जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें कहते हैं जब हरि नाम दीक्षा होती है उस वक्त भी आपको जो है दूसरा जन्म प्राप्त होता है। दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता? एक्सेप्ट करते नहीं करते इस बात को? यह गुरु महाराज ने आपके पूर्ण बाबा को हर लिया है और अब आपको बाबों से मुक्त कर दिया है, आपका नवीन जन्म हो गया। यही कुछ जब छह प्रकार के कार्यों में निपुण हो जाता, षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। वो छह कर्म क्या है जिनमें उसे निपुण होना है और निपुण होने के बाद वो कहलाता है विप्र। आप संस्कृत पढ़िए या बहुत जगह संस्कृत के डायलॉग्स हैं या बहुत पुरानी जो बुक्स हैं उनके अंदर विप्र शब्द जो है ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल होता है, विप्र शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो विप्र का अर्थ क्या है, विप्र किसे कहते हैं? षट कर्मों निपुणों, जो छह प्रकार के कर्मों में निपुण है अर्थात एक्सपर्ट है, सिक्स टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, छह प्रकार का काम। एक कर्म है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, दूसरा कर्म है दान देना और दान लेना, और तीसरा कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना। जो छह कर्मों में निपुण हो जाता है उसको विप्र कहा जाता है। हो सकता है उसने कर्मकांड अभी पढ़ा है, वेदों का वो पाठ पढ़ा है जिसे कर्मकांड कहते हैं। वेदों का जो डिवीजन है, अगर आप वेदों का डिवीजन पढ़ें तो वेदों को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो शाखाएं हो गई, कौन कौन से चार वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद के चार अंग हैं, चार हिस्से हैं। पहला हिस्सा है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद, चार हिस्से। अब ये चारों को अगर जो है आप सम्मिलित कर लेते हो, इसको एक अलग तरीके से डिवाइड करते हो, तो इसके अंदर जो है तीन प्रकार के चीजें बताई गई हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ये लेके चलते हैं कि वेदों में 100,000 श्लोक हैं, तो 80% उसके जो है कर्मकांड के हैं, 16% ज्ञान कांड के हैं और 4% उपासना कांड के, 4,000 उपासना कांड के हैं, 16,000 ज्ञान कांड के हैं और 80,000 कर्म कांड के हैं। जो 80,000 श्लोक हैं ये संहिता और ब्राह्मण दोनों में फैले हुए हैं, दोनों में पाए जाते हैं। अब उन वेदों के अंदर जो व्यक्ति विप्र के लेवल पे है, द्विज के लेवल पे था, वेदों को उसने मान लीजिए पढ़ना शुरू कर दिया, ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो विप्र तक आते आते उसने कर्म कांड ही किया है, अभी तक आगे नहीं बढ़ा, अभी आगे नहीं बढ़ा। अगर वो कर्म कांड से आगे बढ़ के ज्ञान कांड में आता है अर्थात अब वो जो है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है अर्थात भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। जन्म से ब्राह्मण था पर एक्चुअल में अभी वो ब्राह्मण नहीं बना, कहलाता ब्राह्मण है, कहेंगे द्विज ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, परंतु जब ब्राह्मण कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि अब उसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वही ब्राह्मण जब और एडवांस करता है तो क्या एडवांसमेंट आती है उसके अंदर, व्हाट क्वालिटीज ही गेट्स, जो कि उसको उन साधारण ब्राह्मणों से जिन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है उनसे ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं, एडवांस्ड बनाते हैं। तो क्या ज्ञान प्राप्त किया उसने, व्हाट नॉलेज, उसमें क्या गुण आ गए, क्या क्वालिटीज आ गई। तो 5वें अध्याय में भगवद गीता में बताया गया है 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्न, अर्थात वो विद्या से संपन्न हो गया है अर्थात उसने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और विनयशीलता आ गई है, विनम्र हो गया, he has become very very humble, बहुत विनम्र हो गया। वही विनम्र ब्राह्मण जो विनय विनम्रता से संपूर्ण है, तब भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, सरेंडर कर देता है, तो वैष्णव हो जाता है। वैष्णव होने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अर्थात श्री कृष्ण। फिर क्या बोला जाता है, मामेकम शरणम ब्रज। अर्थात अब वो जो है समझ जाता है कि भगवान केवल एक है और कौन है, कृष्ण तत्व बेता। तत्व क्या है, व्हाट इज तत्व, तत्व बेता कहते हैं ना, तत्व को जानने वाला। तो तत्व क्या है, व्हाट इज तत्व, तत्व है कि श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। श्री कृष्ण जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर उनके सारे स्वांश, जो उनके विस्तार हैं, जो उनकी एक्सपेंशन हैं, सब आ जाते हैं। ये नहीं कि नरसिंह देव भगवान नहीं तो श्री कृष्ण नहीं, नरसिंह देव है, ऐसा नहीं है। मीन्स भगवान और उनके स्वांश, वो सब जो है भगवान है। अर्थात तत्व से आप जान गए कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ये तत्व है। जन्म कारण चैतन्य एवं वो भेदी तत्वता, जो तत्व से मेरे जन्म कर्म को जान लेता है। जन्म से जान लेना क्या है, तत्व से जन्म से जान लेना क्या है, कि मैं अजन्मा हूं, मेरा नर आकार है, नर की तरह मैंने आकार लिया है, मैंने एक मनुष्य की भांति शरीर धारण किया है, परंतु मेरा प्राकट्य, मेरी उत्पत्ति माता की योनि से नहीं। कहने को है कि गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, परंतु प्राकट्य जो है कैसे होता है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, काया भी करते थे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। अर्थात भगवान प्रकट होते, भगवान हम जैसे जन्म नहीं लेते, तो ये उनके जन्म की दिव्यता है। दिस इज हिज गुण है, उनका ट्रांसेंडेंटल नेचर है कि भगवान का जन्म जो है वो एक स्पेशल तरीके से हो रहा है। अर्थात वो प्रकट हो रहे हैं, अर्थात अवतरित हो रहे हैं। अवतरित होने का मतलब है ऊपर से उतरकर नीचे आना, अर्थात अपने धाम से वो नीचे आ रहे हैं धरती के ऊपर लीलाएं करने के लिए, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। ऑफ कोर्स यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सजामि हि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में प्रकट होते हैं, इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इसलिए प्रकट होते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए और साधुओं का परित्राण अर्थात रक्षा करने के लिए। परंतु एक तीसरा भी कारण है, तीसरा कारण है कि अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो जिसने तत्व से जान लिया कि उनका जन्म जो है वो और उनके कर्म जो है दोनों दिव्य है, वो हमारी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में भगवत गीता के भगवान चर्चा करते हैं, मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूं, अगर मैं कार्य ना करूं तो संसार विनष्ट हो जाए। आपके लिए एक कार्य प्रिस्क्राइब्ड है, घर में रहते हैं तो घर के कुछ कार्य आपके आपसी रजामंदी से माता पिता से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको ये काम करना करना है कि नहीं करना। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ के आना है, होमवर्क करके आना है वगैरह वगैरह, तो उसके अनुसार आप कार्य करते हो। जॉब में जाते हो तो आपका ऑफिसर जो है, जो आपका बॉस है, आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि दी जाती है जॉब्स पर ही, उनके अनुसार कार्य करते हो। मीन्स आपके लिए जॉब्स को कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ जॉब्स आप बिना किसी के प्रिस्क्राइब किए अपनी मर्जी से भी करते हो, पर मोस्टली जो अपनी मर्जी से कार्य करते हो उसके अंदर सटल प्रिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं छुपी होती है कि मुझे कार्य करना है भाई, घर चलाना है, ये करना है, वो करना है, तो कार्य करना है, चाहे इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आई हो, परंतु सटल इंस्ट्रक्शन उसमें भी एक छुपी हुई जो उसमें इंस्ट्रक्शन है होती है। परंतु भगवान को इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? करते हैं भगवान को इंस्ट्रक्शन? देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान जो है किसी की इंस्ट्रक्शन पे कार्य करते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है मेरे पास, मैंने भक्तों की रक्षा करने का भार स्वयं वहन किया है, मैं करूंगा, दिस इज माई चॉइस। मैंने दुष्टों का संहार करना है, आपकी रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो। हाँ, कलयुग में हम भगवान को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट है, दो तरह से इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, देते हैं हम लोग। पार्ट वन क्या है? मंदिर में आए, भगवान के लिए मिठाई लाए, हाथ जोड़े, भगवान मेरा एक काम करा दीजिए, तो भगवान को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि नहीं दिया? मेरे को IIT में एडमिशन करा दीजिए, मेरे को मेडिकल कॉलेज में करा दीजिए, मेरा MBA में सीट में नंबर आ जाए, मेरे बेटे को MBA में एडमिशन हो जाए। अर्थात हम लोग क्या करते हैं उस सीन में, बचपन से आरती गाते आए हैं, मैं सेवक तू स्वामी, सेवक कार्य करता है, स्वामी धन देता है। यहां हम धन दे रहे हैं, भगवान को सेवक बना दिए हैं, तो मेरी इंस्ट्रक्शन पे काम करो और मेरे बच्चे को पास कराओ, जाओ ड्यूटी पे लग जाओ, ड्यूटी पे लग जाओ, क्योंकि मैंने आपको मिठाई अर्थात फीस अर्थात लक्ष्मी धन जो है दे दिया है। तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे कि नहीं दे रहे? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना। ये है कामना सहित कार्य, जिसमें हम भगवान को भगवान न मान के अपना ऑर्डर फॉलोअर मान लेते हैं कि भगवान मेरे आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी फीस चुकता कर दी। अब एक दूसरा भी इंस्ट्रक्शन का रूप है। दूसरा इंस्ट्रक्शन का रूप क्या है, इसको छोटी सी कहानी से समझे। नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और खूब भ्रमण करने के बाद वापस वैकुंठ पहुंचे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान है, लक्ष्मी जी चरणदवारी है, शेषनाग की शैया। भगवान ने पूछा नारद जी से, घूम आए? हाँ जी घूम आए। अच्छा, तुमने समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया? भ्रमण किया। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी पर तो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? क्योंकि पृथ्वी भ्रमण किया था तो बोले पृथ्वी सबसे बड़ी। भगवान कहते हैं कि दो तिहाई हिस्सा तो जल है, कि नहीं? जिस पृथ्वी को हम देख रहे हैं इसका 2/3 वाटर है, 1/3 लैंड है। सो दो तिहाई हिस्सा तो जल है और एक तिहाई हिस्सा जो है पृथ्वी है, तो जल बड़ा हुआ कि पृथ्वी बढ़ेगी? नारद जी कंफ्यूज, बोले भगवान जल बड़ा हुआ, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें बात समझ में आई है, गुड। अच्छा ये बताओ कि एक कथा आती है उपनिषद में, पुराणों में, कि एक अगस्त मुनि हुए थे, उन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया था और समुद्र सूख गया था। बोले हाँ जी, तो जिसने जल को पी लिया और समुद्र को सुखा दिया वो मुनि बड़े हुए कि जल बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? मुनि बड़े हुए। तो नारद जी कहते हैं भगवान मुनि बड़े। और समझ में अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ कि जब उस मुनि का त्रोभाव हो गया तो वो आकाश में एक तारे के रूप में स्थित हो गए, तारे के रूप में छोटे से। आकाश में तो असंख्य तारे हैं, एक तारा तो है नहीं। तो वो जो मुनि आकाश में तारे के रूप में स्थित हो गए, वो मुनि बड़े हुए कि आकाश बड़ा हुआ? तो नारद जी कहते हैं भगवान आकाश बड़ा हुआ। नारद जी का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा, पगला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। भगवान तो मेरी क्लास लेने दे तो ले मुझे छोड़ेंगे नहीं। भगवान आकाश बड़ा हुआ, अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में आकाश तक पहुंच गए। भगवान कहते हैं मैंने एक ना वामन रूप लिया था ना। बोले हाँ जी, तो मैंने तो तीनों लोग अपने दो पगों में नाम दिए थे, तीनों लोग। तो ये बताओ उसमें आकाश भी आता था, आकाश भी नप गया था? हाँ जी। तो वामन रूप में मैं बड़ा हुआ कि आकाश बड़ा हुआ? अल्टीमेटली नारद जी ने स्वीकार कर लिया कि भगवान आपसे बड़ा कोई नहीं, यू आर दी सुप्रीम, आपसे बड़ा कोई नहीं। बोले कंफ्यूजन खत्म? बोले हाँ जी, भ्रम इल्यूजन कंफ्यूजन सब खत्म होगा मेरे। कहता नहीं, एक बात का जवाब दो। कहते जो भक्त भक्ति करके प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करके मुझे अपने हृदय में छुपा लेता है, वो भक्त बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? कौन बड़ा है? भगवान बड़े हुए कि भक्त बड़ा हुआ? इसीलिए भगवान कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम तो निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। उपदेश कौन दे रहा है? अर्जुन दे रहा है कि भगवान दे रहे हैं? उपदेश कौन ले रहा है? जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन सुन रहा है, तो भगवान जो है घोषणा अर्जुन से क्यों करवाना चाहते हैं? खुद क्यों नहीं कर देते? खुद कर सकते कि नहीं कर सकते? बोल कौन रहा है जी? भगवान। और घोषणा किससे करवाना चाहते हो? क्यों भाई, ऐसा क्यों? प्रिय भक्त है, भगवान कहते हैं कि मैं अपने किए हुए वचन से टल सकता हूं, परंतु अगर मेरे भक्त ने कोई वचन दे दिया है तो बदलेगा नहीं, उसको पूरा होना ही पड़ेगा। दिस इज हिज कमिटमेंट। इसलिए कहते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हारी की हुई घोषणा से मैं कभी टलूंगा नहीं। तो जब भक्त जिसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, जब वो कोई इंस्ट्रक्शन दे देता है, रिक्वेस्ट कर देता है, रिक्वायरमेंट दे देता है, तो भगवान को पूरी करनी पड़ती है। शर्त क्या है? कि आपको भक्त बनना होगा। और भक्त कैसा? परफेक्ट, कच्चा पक्का नहीं, पूर्ण पक्का, परिपक्व। टेम्पररी भक्त नहीं जी, मैंने माला गले में डाल ली, मैं तो अटवारी भक्त हो गया। भैया बाकी गुण भी तो लाओ, बाकी क्वालिटीज भी तो लाओ। माला उसका एक अंग है, एक पार्ट है, उसका एक पोर्शन है, पर उसके अंदर बाकी चीजें भी तो हैं। वो सारी चीजें परफेक्ट करो, अर्थात अब आप जो है बनोगे कैसे? एक परफेक्ट डिवोटी। तो जब वैष्णव बन जाते हैं तो वैष्णव के भी कुछ गुण है, दो चार गुणों की चर्चा करेंगे, दो तीन गुणों की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक है विनयशीलता, दूसरा है सरेंडर, परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होना, इसका क्या अर्थ है? साधारण बातें हैं, भूखा है तो उसको खाना मिलना चाहिए, रोपा ने ही कहा मायापुर के अंदर अपने कमरे की खिड़की से देख रहे हैं कि बच्चे जो है छोटे पत्थरों पे लड़ रहे हैं, तब रूपा ने जयपुरा का महाराज लिखते हैं इस बात को, रूपा ने डिक्लेयर किया कि इस्कॉन टेंपल के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, और उस दिन से जो है फूड फॉर लाइफ की परंपरा आरंभ हुई कि कम से कम खिचड़ी अवश्य डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो आज की तारीख में हर मंदिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेहनत करके कलेक्शन करके जो है खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है आने जाने वाले लोगों को, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी। परा दुखा दुखी, ये साधारण दुख है, साधारण बात है, इससे बड़ा दुख है वो क्या है? जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक प्राणी जो है जन्म मृत्यु ओल्ड एज एंड डिजीज इनके दोषों से अटका हुआ है इस भौतिक संसार में, उसको भौतिक संसार से निकलने का मार्ग दिखाना। आप दूसरे के दुख में दुखी हैं, भाई मेरे को तो समझ में आ गई है कि भौतिक संसार में दुखों के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि कर्म करते हैं तो फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। अभी तक हमने सीखा नहीं है कि कौन से कर्म करें जिससे शरीर न धारण करना पड़े। अभी तक हम जो रूटीन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनसे शरीर धारण करना ही पड़ेगा, छुटकारे की संभावना नहीं है। परंतु शरीर न धारण करना पड़े इसके लिए आपको मैं ज्ञान देना चाहता। अब दूसरे के दुख में दुखी उसको ज्ञान देते हैं, उसको आप कोशिश करते हैं कि उसके पास ज्ञान की दो तरीके हैं, या तो सुन के प्राप्त करे या पढ़ के प्राप्त करे, कोई तरीके हैं ना, बाकी और भी तरीके हैं ठीक है, पर दो मुख्य तरीके क्या हैं? सुन के प्राप्त करे और पढ़ के प्राप्त करे। तो पढ़ना क्या है? रीडिंग है आईज के द्वारा, और दूसरे शब्दों में हीरिंग है आईज के द्वारा। रूपा ने लिखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमारे को सुनाई दे रहा है, सुनना ऑटोमेटिकली इट इज हीरिंग। जब हीरिंग करते हैं तो दैट इज रीडिंग थ्रू ईयर्स, दोनों भाषण है, कान से भी सुन रहे हैं और कान से पढ़ भी रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आप सुन रहे हैं, अर्थात रीडिंग हो रही है किससे? कान के द्वारा। अब आपको मैं ज्ञान देना चाहता हूं, मासिस को, जन सामान्य को, जन सामान्य को ज्ञान देने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप उनको मंदिर में लेके आए और यहां पर ज्ञान प्राप्त कराएं। कहते हैं ना कोई कहता, चलो भाई मंदिर चलते हैं, वहां अच्छा कथा होती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, हमें चलना चाहिए, सुनना चाहिए। 10 को बोलते हैं एक आता, 50 को बोलते हैं एक आता, सब लोग नहीं आते। आप उसको मंदिर में ले आए, ऐसा है कि मैं मंदिर में आना इनका मुश्किल है, मेरे मोहल्ले में तो 50 आदमी ऐसे हैं जिनका थोड़ा इंटरेस्ट है, चलो ऐसा करते हैं मोहल्ले में प्रोग्राम करवा लेते हैं और मंदिर से भक्तों को बुला लेते हैं। तो जन सामान्य जो है मंदिर में आने के बजाय भक्त जो है जन सामान्य के पास पहुंच गए, प्रीचिंग प्रोग्राम्स हो गए, नाम हट हो गए, भक्ति वृक्ष हो गए, अर्थात पंडाल प्रोग्राम हो गए। आप जो है भक्त जो है कथा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए जन सामान्य के पास पहुंच गए, उसमें भी सारे लोग नहीं आ सकते, कितने प्रोग्राम हम कर लेंगे? हमारी सामर्थ्य साधना भी करनी है, मंदिर की सेवा भी करनी है, खुद का पढ़ना भी है, और फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है जिसमें हैवी एक्सपेंडिचर भी होता, खर्चा भी होता है, धन का प्रयोग होता है, टेंट वाला अरेंज करो, मंदिर में जाके करो, सब सब आपको जो है जन सामान्य तक पहुंचने के लिए आपको फिर पैसे की, धन की आवश्यकता है।
अब प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया तरीका बनाया जन सामान्य तक पहुंचने का कि आप ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचा दें बाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तकों का वितरण, मैसेज। एक किताब एक घर में पहुंचती है तो घर में अगर पांच प्राणी हैं तो दो का इंटरेस्ट तो आने वाले कल में कभी ना कभी जागृत हो ही जाता, तीन का ना भी हो। बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, शायद इंटरेस्ट नहीं बना, पर जो माता पिता है उनका इंटरेस्ट तो बन ही जाता। तो आपने जो है उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा दिया, अर्थात जो तत्व है अल्टीमेटली जो कृष्ण का तत्व है उसको आपने जन सामान्य तक पहुंचा दिया, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो गया है तो कुछ लोग उस ज्ञान के मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। ये किताब जहां से लाए थे ना वहां चलना चाहिए, बहुत बढ़िया किताब है, वहां चलना चाहिए, अट्रैक्ट हो गया है। और परा दुखा दुखी, मतलब आप उनके दुख दुख में दुखी थे कि उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालना चाहिए, वैष्णव की क्वालिटी है, वैष्णव का गुण है। तो कितने लोग वैष्णव बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं बनना चाहते हैं वो भी हाथ खड़ा करो, शर्म के मारे कोई नहीं खड़ा कर रहा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे हैं हमें नहीं बनना। वाकई कितने लोग बनना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो वैष्णव बनना है एक तो कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना, नंबर वन, कृष्ण को तत्व से जानना, नंबर एक। नंबर दो, अपने व्यवहार में सात्विकता लानी है, विनम्र होना है और भगवान के प्रति शरणागत होना। और इस ज्ञान को परा दुखा दुखी के नाते आपको जो है जन जन तक, सामान्य जनों तक पहुंचाना है। अर्थात करंट जो मंथ चल रहा है दिसंबर का, इट इज अ बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ, है ना। बुक मैराथन है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं कि बुक मैराथन है, कितने लोग नहीं जानते कि बुक मैराथन है? तो उस वैष्णव अगर बनना है तो परा दुखा दुखी होना है। तो कितने लोग परा दुखा दुखी होने को तैयार हैं? अभी भी आधे लोग खड़े हैं हाथ लगा, आधे लोग नहीं है, हमें नहीं मान, हमें किसी का दुख नहीं दूर करना, उसको दुख मिलेगा तो मेरा अच्छा है। उसने बहुत भक्ति करी ना भगवान की, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तुम क्या चाहते हो? कहते मैं जो चाहता हूँ वो पूरा हो जाए। ठीक है, एक शर्त है, तुम जो डिमांड करोगे तुम्हारे पड़ोसी को दुख ना मिलेगा। उसने एक गाड़ी मांगी, पड़ोसी को दो आ गई। एक बंगला मांगा, पड़ोसी को दो आ गए। देखा ये तो बड़ा कष्टदायक काम है, उसको डबल आ रहा। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो हम लोग वो एक आंख फूटने वाले हैं कि वाकई दुख दूर करना चाहते हैं दूसरे का। तो दूसरे का दुख दूर करना है तो सब लोगों को मंदिर के सहयोग से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। भक्तों से गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस तरह से हम जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। गृहस्थी में रहते हुए माताएं हैं, नहीं जा सकती बाहर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, एग्रीड, समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उसका भी एक तरीका है, प्रभु जी दो बेटियां भगवदगीता की मुझे दे दीजिएगा। आप जाओगी? नहीं जाओगी। क्या करोगी? जितने रिश्तेदार हैं उनके यहां जो भी फंक्शन होगा
जन्मदिन हो, विवाहोत्सव हो, कुछ भी हो, मैं भगवान का छोटा लेमिनेशन और एक भगवत गीता गिफ्ट करके आऊंगी। भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मेरी जितनी सहेलियां हैं जो इस काम से नहीं जुड़ी हैं, जो भगवत गीता नहीं पढ़ती हैं, उन सब के घर जाऊंगी हेलो हेलो करने के लिए, मिलने के लिए, हरे कृष्णा करने के लिए, हलचल पूछने के लिए, और भगवत गीता देकर आऊंगी। किसी घर में एक, किसी घर में दो, पति के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग, घर के लिए अलग। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के कई तरीके हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे तो भक्तगण जो है ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ट्रेन वहां रोड पे बहुत कम करते हैं, बट मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्रेन में होता है। 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर ट्रेन में गए और फिर उसी ट्रेन से, मिलती जुलती ट्रेन से वापिस आ गए। तो भैर का सेशन, सवेरे का साधना, तो भैर का बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक का अपना अपना सिस्टम है, पर एक सिस्टम कॉमन है, वो क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो करना ही। तो कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं? कितने लोग करेंगे? माताएं कितनी करेंगे? 4 माताएं बस, बाकी सब फेल। तो अनुरोध यही है कि हमें भगवान के नाम का जन जन, सामान्य जन तक जो है पहुंचाना है। और यही जो है उपदेश है कि जब भी हम कोई क्लास करते हैं तो उसका पीछे उसका लक्ष्य यही होता है कि मंदिर के भक्त जो हैं सामान्य जनों के दुखों से दुखी हैं, उनको जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है उससे बाहर निकालना चाहते हैं। जब आपको ज्ञान मिल गया है तो आप उनको जो है इस दुख से बाहर निकालिएगा, तब जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी अच्छे तरीके से। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। नितई गौर प्रेमानंदे।